तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता।
तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल सही ना लगता,
तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना शांति। हाँ, वियोगी तो है ही, पर प्रयोग करने से हम और भी गहराई से अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि कई बातें थियोरेटिकली हम जानते हैं, समझते हैं, परंतु अनुभव नहीं किया है। हम कहते हैं बाबा आप मेरा सब कुछ हो, माता पिता भाई सखा साजन बालक बाप टीचर गुरु सर्व संबंध हमारा बाप से है। आपने में से कितनों ने बाप का बाबा शिव बाबा से मां का अनुभव किया, जरा हाथ उठाना। थोड़े, बाप का ज्यादा, टीचर का गुरु का राय लेते हैं गुरु से, हाँ योग द्वारा राय लेते हैं, साजन का, एक दो भाई है और 10-15 माता है। अच्छा, बालक का थोड़े, अभी आपका कल का लास्ट दिन है, कल का लास्ट, तो एक दिन में भी ये करना काम, बाबा के साथ जिस संबंध का अनुभव नहीं किया उसका प्रयोग करो। क्या था हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में, एक माता आई, उसको खुद 5 बच्चे थे, परंतु उसको मां का सुख इतना नहीं मिला क्योंकि उसकी मां थी बिजी रहती थी, वो घर काम निपटाकर पति को शॉप में मदद करती थी। तो वो मुझे कहती है, दीदी मेरा माँ से प्यार नहीं है, प्यार नहीं मिला है, मैं माँ को कभी नहीं कह सकती हूँ कि माँ मैं तुमको प्यार करती हूँ। वहाँ तो क्या है, विदेश में बोलना पड़ता है, यहाँ प्यार दिखाते हैं पर कोई बोलते नहीं ना। माँ कहती है मैं तुमको प्यार करती हूँ, ना बच्चा कहता है मैं प्यार करता हूँ, पर संबंध से प्यार का अनुभव करते कराते हैं। मैंने कहा भाई तुम लौकिक माँ के लिए क्यों रो रही है, क्यों नहीं बाबा से तुम माँ का प्यार लो, क्योंकि बाबा हमारी माँ भी है। उसने प्रयोग किया, जब खाना खाती थी तो समझती थी बाबा मुझे गिट्टी खिला रहा है माँ के रूप में, और जब सोती थी तो वहाँ ठंडी में क्या करते हैं, बच्चे को बहुत अच्छी रीति से ब्लैंकेट में लपेट के लोरी गा के सुलाते हैं। तो जब सोती थी तो ये अनुभव करती थी कि बाबा मुझे लोरी गा के ब्लैंकेट में लपेट कर सुलाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इसने किया और थोड़े दिन के बाद आकर कहती है अभी मुझे बाबा से माँ का प्यार मिला, अभी मैं लौकिक माँ को कह सकती हूँ माँ तुमको प्यार करती हूँ। मैं फिर बम्बई में हमारे पास एक युगल आता था, और आपको मालूम है कि यहाँ ज्ञान के पहले सबको बच्चा चाहिए, कम से कम एक बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए वो भी। तो उस युगलों ने बहुत कोशिश की, बच्चा नहीं था, तो मैंने उसको कहा माता तुम शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो। क्योंकि दूसरे बच्चे हैं, कोई अच्छे निकलते हैं, कोई चंचल निकलते हैं, बीमार होते हैं, माँ बाप को कितनी चिंता हो जाती है। और बुढ़ापे में आजकल तो क्या करते हैं, माँ बाप को बूढ़ा घर में भेज देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुमको बच्चा नहीं, शिव बाबा को बच्चा बना लो, वो तुमको कभी तकलीफ नहीं देगा, कभी तुमको उसकी सेवा नहीं करनी पड़ेंगे। तो उसने क्या शुरू किया प्रयोग, जब भी शॉपिंग पर जाती थी बाबा के घर के लिए कुछ ले आती थी, अपनी सब्जी लाती थी बाबा के पास भी ले आती थी, जब भी कपड़ा खरीदती थी खुद के लिए भी खरीदती थी तो बाबा बच्चे के लिए भी खरीदती थी। मतलब थोड़े समय में वो दुख भूल गए कि मुझे कोई बच्चा नहीं है। ऐसे हाँ, भाइयों के लिए थोड़ा मुश्किल है अपने को सज्जनी समझना, परंतु ये भी प्रयोग करो, अपने को सज्जनी समझकर रात को साजन के साथ प्यार से सो। जब खाना खाते हैं प्यार से बाबा के साथ खाओ या बाबा को पहले खिलाओ। इंडिया में तो क्या करती है वाइफ, पहले पति को खिला के, बच्चों को खिला के फिर खाती है। तो पहले बाबा को खिला के फिर खाओ। तो सखा बन कर क्या करो, जहां जाओ बाबा को कहो चलो बाबा हमारे साथ, हम चले यहां वहां जहां जाना है बाबा के साथ जाओ। बाबा से रूहान करो, सुख दुख की बात बाबा को बताओ, दूसरों किसी को नहीं, क्योंकि दूसरे सुन लेंगे, मदद नहीं कर सकते। दुनिया में कितना भी अच्छा मित्र है क्या करेगा, कभी साथ देगा कभी नहीं देगा, कभी कहेगा आई एम सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, आपकी इस बात में मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, परंतु बाबा तो ऐसा फ्रेंड है सुख दुख में मदद के लिए हाजिर रहेगा। जब मुरली सुनो टीचर के रूप में सुनो, सामने वाली बैठी है उसको नहीं देखो, नहीं तो कहेंगे ये बहन जी तो अच्छा नहीं सुनाती है, ये बहन जी तो बहुत विस्तार करती है, ये बहन जी के उच्चार ठीक नहीं है आदि आदि। परंतु समझो बाबा मुझे मुरली सुनाते हैं, उस प्यार से सुनो टीचर। और कभी भी राय सलाह करनी है तो जितना आपका कनेक्शन बाबा से ठीक होगा, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होंगे तो आप बाबा से डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हो। बाकी सदगति दाता तो आया ही है सदगति करने, वही हमारी सदगति करेगा, उसके सिवाय तो कोई सदगति कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे बाबा से हरेक संबंध का प्रयोग करो तो इससे क्या होगा कि बाबा के साथ आपके सर्व संबंध पक्के भी हो जाएंगे और आप एक बाबा का सहारा लेंगे। नहीं तो क्या है, हम लोग कितनों का सहारा लेते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं ना एक दो के ऊपर, मानव के ऊपर आधारित हो जाते हैं। अभी आधार लो, सहारा लो एक बाप का, फिर नष्ट मोह जल्दी हो जाएंगे। नहीं तो मुंह रहता है जिसके ऊपर आधारित है ना, उसमें मुंह हो जाता है और लास्ट में फिर फेल हो जाएंगे। मुंह होगा तो क्योंकि लास्ट पेपर तो मालूम है हमको, बाबा ने पहले से बोल दिया है, लास्ट पेपर होगा एक सेकंड में बाबा के सिवाय और कोई की याद ना है। नहीं तो जिसमें मुंह होगा, चाहे वस्तु चाहे वैभव चाहे बच्चे चाहे पोते, याद आएंगे। एक माता ने हमको कंप्लेन की कि मुझे योग में कभी कभी पोता याद आता है। मैंने कहा हाँ, ग्रैंड मदर का दादी का पोते में मोह हो जाता है, बच्चों से भी ज्यादा पोते में मुंह होता है। गुजराती में कहते हैं नाना से व्याज वधारे वालू लागे। पोता टिकलू टिकलू करता है और दादी दादा क्या करते हैं, पोते की सब इच्छा पूरी करते हैं। माँ बाप कभी गुस्सा भी करेंगे, दादा दादी कहेंगे छोड़ दो बेचारा बच्चा है ना, चंचलता तो करेगा ना, तो प्रोटेक्ट करते हैं दादा दादी, मोह होता है ना। तो ये देखना है कि हमारा किसी में भी मोह ना रहे। शुरू शुरू में अपने को चेक करने के लिए क्या करते थे, बाबा कहते थे चेक करो, जिसमें मोह है उसको देखो कि वो मर रहा है, कल्पना करो और तुम्हारी स्थिति क्या रहती है, तो मालूम पड़ेगा मोह है या नहीं। तो इसलिए बाबा कहते अंतमति सोगति, यदि अंत में कोई भी मनुष्य याद आएगा, दूसरा जन्म फिर मृत्यु लोक में लेना पड़ेगा। इसलिए नष्ट मोहा बनना है। दूसरा आज बाबा ने कहा है कि आपको जो खजाने मिले हैं उनको प्रयोग में लाओ, उनको दान करो, जितना दान करेंगे 10 गुना बढ़ेगा। इसलिए खजानों का प्रयोग करो। कौन से खजाने बाबा से मिलते हैं हमको? समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, ज्ञान, गुण, शक्तियां, जिसमें मेनली सुख, शांति, प्यार, आनंद आदि आदि आ जाते हैं, पवित्रता। तो देखना है, बाबा कहते हैं ना, बिच्छू भी क्या होशियार होता है, नरम चीज देखकर डंक लगाता है। तो आपको भी नर्व्स देखकर ज्ञान देना है। आज भी बाबा ने कहा ना, ट्रेन में जाते हो 10-20 को संदेश दो, एक को सुनाएंगे, अनेक सुनेंगे। तो जहां भी जाते हैं, क्योंकि शादी व्यवहार में जाना पड़ता है कभी कभी, ज्ञान देने के लिए जाओ, सेवा करने के लिए जाओ, सिर्फ चेहरा दिखाने नहीं जाओ। बाबा कहते हैं सेवा लक्ष्य रहे, कार्ड छपाओ, सबको संदेश दो, बाप और वर्षा, अल्लाह और बे, मन मना भव, मध्याजी भव। तो इसलिए लक्ष्य रखना है, हम हमारे पास जो भी आवे, घर में भी चित्र रखो। किसके घर में चित्र है जरा हाथ उठाना, काफी के लोगों के घर में चित्र है। हाँ, तो जो भी आवे उनको समझाना है। मैंने जब अपनी डिस्पेंसरी चालू की बंबई में, कांदिवली में, तो मैंने भी लक्ष्मी नारायण जाट त्रिमूर्ति शिव बाबा 4-5 चित्र लगा दिया। जो पेशेंट आते थे पूछते थे, और जिनको इंटरेस्ट था, हमारी 12 बजे डिस्पेंसरी पूरी होती थी 9 से 12, तो 12 बजे आके कोर्स करते थे। तो कई पेशेंट बाबा के बच्चे बन गए। ऐसे दुकानों में भी बाबा कहते हैं, बाबा का संदेश देने के लिए चित्र रखो, पर्चे रखो सेंटर का। तो इससे क्या है कि डबल सेवा हो जाए। अपना धंधा तो होगा ही, पर ये सेवा भी हो जाती है। और जहां भी जाते हैं, बाबा कहते हैं अपने पर्स में पर्चा जरूर, और मौका देकर सबको देते जाओ। और बाबा कहते हैं जो अपने पास पर्चे नहीं रखते हैं, उनको क्या टाइटल देते थे मालूम है बाबा? हजाम है, बुद्धू है। हाँ, तो इसलिए लक्ष्य रखो कि हमको ज्ञान जरूर बांटना। दूसरा, हमें गुणवान बनना है, सैंपल बनना। इतना शांति प्रेम दया से चलना फिरना बोलना बातचीत करने है। ज्ञान के सिवाय लेन देन नहीं करनी है। लंदन में जब दादी थी उसने क्या रिवाज शुरू किया, जो समझो क्लास में नहीं आ सकते थे फोन करते थे, उसको कोई ना कोई बहन फोन में कम से कम मुरली का सार सुनाती थी। और जो भी सेंटर पर आए पहले बाबा के कमरे में जाए और मुरली सवेरे नहीं सुनी पड़ी है तो जाकर मुरली पड़ी होती है एक स्थान पर, जाकर पढ़े। और अंत में कौन सी सेवा होंगी, हमारे चेहरे और चलन से। हमारे चेहरे से उन्हों को अपने इष्ट देव देवी का साक्षात्कार होगा। तो ऐसी हमारी स्थिति हो जो मनसा सेवा कर सके। और हरेक को प्रेम चाहिए, पशु पक्षी को भी प्रेम चाहिए और प्रेम का रिस्पांस देते हैं। कई न्यूज आती है, एक गाय थी और एक शेर का बच्चा था। अभी वो शेर के बच्चे की माँ मर गई थी तो गाय ने उसको दूध पिलाया, तो वो रोज आकर गाय के पास रात को बैठता था और विदेश में तो है कि कई है जो जंगलों में जू में प्राणियों को खिलाते पिलाते हैं। तो एक था जिसने छोटे शेर के बच्चे को खिलाता था। वो 10 साल के बाद जब फिर से आया वहां, वो शेर इतना उसको प्यार करने लगा। तो क्या है कि प्राणी भी प्यार को समझते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, सबको प्यार करो, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखो। तो जहां हम प्रयोग करेंगे हमारी प्रगति होंगी। यदि हमारी उन्नति नहीं होती है, माना हम प्रयोग नहीं करते। तो समय, श्वास, तन मन धन, ये हमें नेचर से खजाने मिले हैं, तो देखना है कि उसका भी हम सदुपयोग करते हैं, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाते, एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। क्या है, अज्ञान में हम लोगों को क्या आदत थी, पर दर्शन करने की, पर चिंतन करने की, पर मत सुनने की। कभी कभी ज्ञान में आकर भी ये आदत चलती है, कौन किसके साथ फ्रेंडली है, कौन क्या ड्रेस पहन के आए हैं, और नेचुरली है जो लौकिक में रहते हैं, व्यवहार में आते जाते हैं, तो देखना पड़ता है नए नए कपड़े कौन सी फैशन के है, कौन सा कलर मॉडर्न कलर है, और दिवाली पर चाहते हैं नए कपड़े खरीदें, नए फर्नीचर खरीदें, नए गहने खरीदें। तो ये देखना है कि इसमें अपना समय शक्ति धन व्यर्थ ना जाए, और सबसे ज्यादा व्यर्थ हम किसमें लगवाते हैं, फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सबसे ज्यादा उसमें जाते, जैसा भी समय मिला खोला फोन, क्या मैसेज है क्या नहीं है, किसको मैसेज देना है, पास करना है, फिर और किसी को टेलीविजन का शौक होता है, टेलीविजन में समय गंवाते हैं। बाबा कहते हैं न्यूज भल देखो, दुनिया में क्या चलता है देखो जरूर, पर ज्यादा समय नहीं लगाओ। कई लोगों को अज्ञान में तो आदत होती है उठकर पहले न्यूज़पेपर देखेंगे कि क्या समाचार है आज। तो ये है कि हमारा संकल्प वेस्ट न जाए, समय वेस्ट न जाए, तन सिर्फ बाबा की सेवा में लगाना। क्या है, माताओं को क्या आदत होती है, सारा दिन घर का काम, रात को देरी से सोएंगे, खास बम्बई में तो, आपके तो उल्लासनगर में घर वाले देरी से आएंगे, देरी से खाना गरम खरम खिलाएंगे, देरी से सोएंगे, अमृत वेला, ओम शांति। हाँ, तो ये भी देखना है, सवेरे सो सवेरे उठो। मम्मा क्या करती थी मालूम है ना, कभी 12 एक बजे सोई तो भी अपना नियम था 2:30 बजे उठना, उठ जाती थी। एक बार मुंबई में कोई मिनिस्टर को मिलने 12 बज गया, 2:30 बजे उठी। रमेश भाई के घर रहती थी। रमेश भाई कहे, आप इतना देरी से सोई और उठ गई अपने टाइम पर। मम्मा कहे, मैं मंत्री को मिलने देरी तक जाग सकती हूँ, 2:30 बजे तो मेरी पीयू से अपॉइंटमेंट होती है, मैं कैसे मिस करूं। तो इसी रीत से हमें भी अपना नियम ठीक रखना है। ऐसे नहीं क्या सारा दिन तो कर्म योग करना ही है ना, चलो अमृत वेले ना उठे तो क्या हुआ। या ठंडी में कहेंगे रजाई बहुत अच्छी लगती है, हमारे पास मॉरिशियस में एक भाई था, उसने अपनी डायरी के ऊपर लिखा, मुझे रजाई से राजाई प्यारी है। अर्थात अपने को जल्दी उठाने के लिए कि मैं रजाई कैसे गवाऊंगा। रजाई तो प्यारी है, पर रजाई तो ज्यादा प्यारी है ना। तो तन बाबा की सेवा में लगाना है। क्या है, हमारे पास एक फीजी में माता थे, अपने 2 बच्चे 2 भतीजे थे, उनको भी क्योंकि वहां गांव में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो 4 बच्चे थे। सवेरे 4 बजे से उठकर नाश्ता बनाना, कपड़े धुलाई करना, घर सफाई करना, क्योंकि नौकर तो वहां नहीं होते थे ना, घर सफाई करना, फिर आंगन सफाई करना, कपड़े सुखाना, कपड़े लपेटना, 3 टाइम खाना पकाना, बर्तन सफाई करना, और टाइम मिलता था तो अपने पति की शॉप में जाकर मदद करते थे। ज्ञान में होते हुए भी अमृत वेला नहीं, मुरली नहीं, कुछ नहीं, काम काम काम। और लंदन में हमारे पास एक युगल आता था, 2 बच्चे थे, और लंदन में तो आप जानते हैं डिस्टेंस बहुत होता है, तो वो लोग रहते थे इल्फर्ड में। परंतु माता को बहुत उमंग था पढ़ाई करना, सेंटर पर जाना, अपने घर में भी पाठशाला होती थी ना, पर दादी जब लंदन में है, मुरली वहां की मिस नहीं करनी है। तो वो क्या करती थी, टर्न बांट दिया, एक दिन पति जाए एक दिन खुद जाए। जब वो खुद जाती थी, छोटे बच्चे को साथ में ले जाती थी। शुरू शुरू तो बेबी गाड़ी में, प्रेम में, ट्रेन में जाती थी। फिर उसने कार खरीदी और वहां उसी एरिया में रहते भाई के साथ कार में जाने लगा। फिर उसने कार भी सीखी, ड्राइविंग, और एक दिन वो ड्राइव करके ले जाती थी। पति को कहा, तुम बेबी को तैयार करके स्कूल में छोड़ना। तो कई माताएं ऐसी भी मजबूत होती है जो इतना कष्ट सहन करके भी सेंटर पर जरूर जाना है मुरली सुनने। और लंदन में दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी। अमृत वेला भी सबको करना है, मुरली भी सबको सुननी है। तो गुरुवार को माताएं 2 बजे से आती थी और 4 बजे के पहले आधा काम कर लेती थी। फिर 4 से 4:45 योग करना, फिर बाकी का भोग वगैरह बनाना 5 के बाद, मुरली मिस नहीं करना। और दादी जब ऑस्ट्रेलिया आई तो कई माता को दादी को गरम गरम खिलाने का शौक होता है, तो मुरली मिस करके भी दादी का ब्रेकफास्ट तैयार करती थी। दादी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी यदि तुम मुरली नहीं सुनेंगे। तो दादी को जो अपने मुरली का शौक था हर एक को लगाती थी। तो मन को तो बाबा की याद में लगाना है। मनसा सेवा सब कर सकते हैं, चाहे बूढ़े है, बीमार है, कैसे भी है, मनसा सेवा तो कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारी एक माता को सर्विस का बहुत शौक था, तो पहले तो इधर उधर जाके सेवा करती थी। फिर उसको कैंसर हुआ तो घूमना फिरना बंद हुआ, पर वो फोन पर सेवा करती रही अंत तक। और धन भी हमको देखना है, फालतू नहीं गंवाना है। मेरा धन है ऐसे समझ कर नहीं कि जो पसंद चीज आ गई खरीद ले, नहीं, ये बाबा का पैसा है। जहां जरूरी है वहां ही खर्च करना है। फालतू शॉपिंग करके धन व्यर्थ नहीं गंवाना। मतलब तन मन धन बाबा ने हमें अमानत दी है, उस अमानत को बाबा की परमिशन से ही यूज करना है। और बाबा हमेशा कहते हैं कम खर्च बाला नशी। तो प्रोग्राम भी करो, सर्विस भी करो, नेचुरली सर्विस में खर्च तो लगता है, परंतु जितना खान पान रहन सहन में इकोनॉमी कर सको अच्छा है। जब बैगरी पाठ होता था शुरू शुरू में सेवा पर, जब दादियां निकली, दादी जान के अपना अनुभव सुनाती थी। बंबई में रहती थी, कहाँ कहाँ सेवा के लिए जाती थी पैदल। और खाना क्या? केला, चना, भूंगरा। और उन दिनों में यदि कोई सुनने वाले कुछ देते थे, क्योंकि संपर्क वाले थे शुरू में, तो कईयों को भावना होती है सीधा देवे, घी देवे, चावल देवे, ऐसा ऐसा। तो क्या करते थे? खुद नहीं खाते थे, यज्ञ में भेजते थे। यज्ञ से इतना प्यार कि यज्ञ में देना है। और एक हमारी दादी थी, कहाँ गए थे, उसको एक बड़ा तरबूज मिला। उसने क्या किया कि तरबूज के ऊपर ही लिखा ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, और पार्सल कर दिया कि गुरुवार भोग में लगे, और लकीली वो पहुंच गया स्थान पर मधुबन में, पांडव भवन में, और बुधवार को पहुंचा। और उसकी भावना थी बाबा ने गुरुवार भोग लगाया। तो क्या है कि भावना का भाड़ा मिलता है। और लंदन में दादी को कोई पूछते थे कि हमें वर्षे में इतना मिला है, क्या करें, तो दादी हमेशा कहती थी 1/3 अपने लिए रखो, 1/3 लोकल सर्विस के लिए रखो, 1/3 मधुबन में भेजो। और लंदन में या यूके में कईयों ने अपना घर बाबा की सेवा में दे दिया, या बेचकर बाबा को पैसा दे दिया। और दादी ने क्या किया, एक कमरा दे दिया शक्ति भवन, पांडव भवन, रिट्रीट सेंटर में। तो इसी बीच से लंदन में और यूके में कहो कई सेंटर खुल गए, क्योंकि दादी को कला थी धन सफल कराने की। कहती थी अपनी इनकम का 10%, 15%, 20% पहले यज्ञ में दो। बंबई में प्रकाशमणि दादी 60s में आई, 64 में। तो एक भाई था, वो क्या करता था, 100 रुपया कमाता था उस दिन में, और 10 रुपया बाबा के बॉक्स में डालता था। दादी ने उस भाई को कहा, तू 90 रुपये में कैसे अपना खर्च चलाते हो? तो कहता है, दादी ज्ञान के पहले मैं 10 रुपया बीड़ी पर खर्च करता था, अभी बीड़ी पर खर्च नहीं करना है, क्यों नहीं बाबा की सेवा में लगाऊं। कांदीवली में हमारे पास एक माता आती थी, उसका पति ज्ञान में नहीं था और बहुत कंजूस था, एक पैसा भी नहीं देता था उसको, खुद ही सब्जी खरीदना, अनाज खरीदना, जो भी खरीदना है खुद ही खरीद के आता। अब माता को दिल होती थी मैं यज्ञ में कुछ दूं, तो उन दिनों में 60s 70s में राशन होता था ना बंबई में, तो राशन में हर एक व्यक्ति दीठ गेहूं इतना, चावल इतना, ये वो मिलता था, और उसको ब्लैक में बेचो तो डबल पैसा मिल जाता था। तो माता क्या करती थी, जो अनाज बचता था ब्लैक में बेचकर बाबा के भंडारे में डालती थी, और धीरे धीरे फिर अपना बिजनेस शुरू किया फैंसी सामान का, और यज्ञ में मदद करती रही। तो इसी रीत से जिनको सेवा करनी है वो लक्ष्य रखकर जरूर अपना तन मन धन संकल्प श्वास सब सफल करते हैं, कुछ व्यर्थ नहीं गंवाते। तो हमें यही देखना है कि हमारा सब कुछ हम सफल करें और भविष्य बनाए। हम जो त्याग करते हैं या दान पुण्य जो भी करते हैं अपना भाग्य बनता, बाबा के ऊपर उपकार नहीं करते न सेंटर पर उपकार करते हैं, हम अपना भाग्य बनाते हैं। तो भाग्य बनाने का अपने को उमंग उल्लास होना चाहिए, तो युक्तियां निकल जाएंगी। कई माताएं इतना गरीब थी, बंबई में मैं 6-7 साल सेवा की, वो क्या करती थी, ट्रेन के लिए इतना खर्चा नहीं करती थी, सेंटर पर हफ्ते में एक बार आती थी, पर बचत करके बाबा के बॉक्स में जरूर डालती थी। ओम शांति।
धन्यवाद।